आयत नंबर 4 से अगली चंद आयत तक हमें खास तौर पे वो वाकयात और हालात मिलेंगे कि जिसमें मुसलमान उस दौर में दो चार थे। खुलासे के तौर पे आयत आगे तक करती जाऊंगी और फिर इंशाल्लाह हम इसमें से कुछ चीजों को आगे लेंगे। फरमाया फइजा लकीतुम, पस जब तुम भी मुलाकात करो, कहाँ? मैदान जंग में। छोटा सा नीचे लिख लें, ये किसी पार्टी की मुलाकात नहीं है या किसी शॉपिंग मॉल की मुलाकात नहीं है। काफरों को देखा और शुरू हो जाओ। फइजा लकीतुम, जब मैदान जंग में मुलाकात करो, किन से? अल्लज़ीन कफरू, काफिरों से, तो क्या करो? फदरबर रिकाब, तो इनकी गर्दनें उड़ा दो। मुझे बताइए कि अगर कोई इस आयत का गैर मुनासिब तर्जमा करे तो क्या मफहूम देगा? और ये आयतें नॉन मुस्लिम कोट करते हैं कि देखो ये हैं मुसलमान दरिंदे, खून के प्यासे कहते हैं जब भी तुम किसी काफिर से मुलाकात करो तो उसकी गर्दन उड़ा दो। इस आयत का तो मिस्ताक पता क्या? हर मुसलमान के पास एक गन होनी चाहिए, या तलवार हो या तीर हो। कोई काफिर, कोई पोस्टमैन देखा शूट कर दो, उधर कोई देखा मेलमैन शूट कर दो, उधर कोई पुलिसमैन देखा शूट कर दो। अल्लाह के नबी ने ये किए, और कुछ तो बातों से शूट करते रहते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें और आयतें इसी तरह शर फैलाती हैं, और इस सूरत की बहुत सारी आयतें मुसलमानों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं। आर्टिकल जो आप पढ़ेंगे इसी किस्म की आयतें लिखी होंगी, देखो देखो ये मुसलमान। अब हमने चूंकि कुरान तो पढ़ा नहीं होता, हमें हाथ पाँव पड़ जाते हैं, ठंडे होते हैं, कहते अच्छा ऐसा है ये कुरान, तौबा तौबा मैं नहीं पढ़ती, बस ही मैं तो वो नमाज पढ़ रही हूँ यही पढ़ता। ये आयतें पेश कर करके आज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तरीके पे गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों को उनके दीन से भी दूर कर दिया। और वो नस्लें जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, जब वो ये आयतें पढ़ते हैं अपने सुनते हैं दोस्तों से, वो शर्मसार हो जाते हैं। अल्लाह ने हालांकि इन आयत को किसी जगह रखा, ये आयतें जो हैं ये 13 साल के सब्र के बाद नाजिल हुई, 1 साल की कोशिश के बाद नाजिल हुई, कि जब पूरी कोशिशें बच जाओ बच जाओ बच जाओ। देखिए आप रोड पे खड़े हैं, आप गाड़ी लेके गए, आप देखिए काफिर की गाड़ी है, ठस से जाके अपनी गाड़ी उसको मार दें, काफिर मरेगा कि आप भी मरेंगे? उसकी गाड़ी का नुकसान है कि आपका भी? बस यहाँ से ही देख लें, रोड पे जाते हुए आप हर गाड़ी से टकराएंगे तो वो नहीं मरेगा आप भी मरेंगे। क्या करते हैं? बचाओ, वो तुम्हें नहीं दे रहा रास्ता, तुम उसको दे दो। जब गाड़ी पे एक रोड पे जाके ये असूल है, तो मुसलमानों की जिंदगी में क्या असूल होना चाहिए? क्या कोई जरूरत है इन आयतों पे अग्रेसिव होने की? मार दो इनको, गोलियां मार दो इनको, मुर्दाबाद कह दो, इनके ऊपर बॉम्ब मार दो, वो मरेंगे तो तुम भी तो मरोगे, तुम्हारे बॉम्ब गैर मुस्लिम मुल्कों पे पड़ेंगे तो वहां रहने वाले मुसलमान भी तो मरेंगे। ये हरगिज मतलब नहीं इस आयत का जो लिया गया और बगैर समझ के लिया गया। हाँ जब आ गए मैदान जंग में, तुम्हें मारने के लिए आगे तैयारियां करके आगे, घरों से पूरी जुरत के साथ आए, लौंडियों को लेकर आए, नाचने गाने वाली औरतें साथ लेके आए हैं, फिर क्या करो? नहीं नहीं नहीं, आओ प्लीज हमें मार दो। आप सोचिए मैदान जंग में कोई जाके नो 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 वी आर पीस मेकर, वी आर पीस लवर, मारो गोली हम नहीं हाथ उठाएंगे। डज इट मेक एनी सेंस? छोटा बच्चा अपना दिफा करता, औरत अपना दिफा करती है, बिल्ली अपना दिफा करती है, तो मुसलमान क्यों ना करे? वो तुम्हें मारने आए हैं तो क्या तुम उनसे मर जो? ये तो खुदकुशी है। ये कब होगा? जब टकराव होगा, जब मैदान जंग में आ गए, हक और बातिल की जंग आ गई, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आ गई, पूरी कोशिशें हुई ऑर्गेनाइज किस्म की, जब जंग के बगैर चारे कार न रहे, अब सुस्ती ना करो, अब कोताह अंदेश ना हो जाओ, अब बुजदिल ना हो, अब कसलमंदी ना रखो, अब अपनी सेंक्शंस के जाने का खतरा ना रखो, अब जुरत की बात करो। बाज मुसलमान इतने ढीले हो गए, वो कहते नहीं 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 नहीं, वो मारे फिर भी उनसे प्यारी करो। ये कैसी बात है? रहम और शफकत का एक वक्त होता है, कमजोरी और ताकत के वक्त में इंसान के रवैयों में बिल्कुल फर्क होता है। आगे कोई अब ना भागे, क्योंकि मुसलमान गयूर होता है, मुसलमान जुरत वाला होता है, और ऐसे मौके बार बार मुयसर नहीं आते कि जब इंसान दुश्मन की ताकत को कुचल के रख सके। काब मारो, सर ना उठे, वो दिमाग जिनके अंदर इस्लाम के खिलाफ नजरियात और सोचे हैं उनको मार दो, ताकि सर उठाने के काबिल ही ना रह सके। रोब और जलाल हो, ये दरबा लफ्ज में रोब भी है, फिर क्या हो? हत्ता, यहाँ तक के, इजा, जब, असखंतुमूहुम, जब इन्हें खूब कत्ल कर दो तुम। ये जो असखंतुमूहुम लफ्ज है ना, सखनून से है, सा, खा और नून। अरबी में सौबुन सखीन कहते हैं उस कपड़े को जिसकी बुनाई बड़ी उम्दा हो, वीविंग होती है ना इंग्लिश में, अगर आप समझें, कपड़ा जो बहुत कीमती होता है तो उसके धागे बड़े करीब करीब होते हैं, और जो सस्ती लॉन होती है वो दूर दूर धागे होते हैं और उसको कलफ से जमा देते हैं, जब आप धोते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं। इसके बरक्स जो बड़ी फाइन किस्म की लॉन होती है वो देखें कि धोने पे सुखड़ती नहीं। तो ये है सखन, बड़ा सॉफ्ट यानी फाइबर। इसी तरह सखना कहते हैं किसी चीज को उठाकर उसका वजन का अंदाजा करना। बस ये देखें कि ये जैसे पॉइंटर है ना, तो मैं इसको उठा के देखूँ ये कितना भारी होगा, यानी इसका वेट करो, फील करो, हालात देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो। असखना सखीनन कहते हैं किसी चीज का मोटा होना, उसकी थिकनेस देखो। अब ये दोनों तीनों लफ्ज जब आप डिक्शनरी के जोड़ते हैं तो यहाँ जो मानी इसका बनता है वो क्या है, हत्ता इजा असखन तुम, कि जब तुम खूब उनकी कत्लो गारत गरी, जब उनकी संदेह के खून बहाने की कैफियत है उसको देख सको। गलबे का मानी है गलब तुमूहुम व कसर फीहिमुल जराह, मतलब क्या कि जब तुम इस पर गालिब हो जाओ और इनकी अक्सरियत जख्मी हो जाए, ये मुराद है। यानी कि तुम्हारी लड़ाई से फिर जब ये खूब इनकी जोर टूटे, इनकी ताकत टूटे, तो फिर तुम इनके ऊपर हमला कर सकते हो। किसी चीज़ में मुबालगा करना और उसकी कसरत करने को भी अलिसखान फी शैयन कहते हैं, मतलब क्या है कि फिर तुम कुश्तों के कुश्ते लगा दो। जब मैदान जंग में जाओ तो फिर ढीली ढीली बातें ना करो औरतों वाली, फिर इनको जख्मों से चूर चूर करो, कब तक, जब के मगलूब ना हो जाए और इस्लाम गालिब ना दे। तो उस वक्त जंग बंद करो जब वाकई इनकी शिद्दत टूट चुकी हो, अबू जहल का सर कुचल चुका, बड़े बड़े सरदार मरे गए, बाकियों को क्या करो, फशद्दुल वसाक, फिर कस के रस्सियां बांधो, कुछ को मार दो जहां से फितने उठते हैं, बाकियों को रस्सियों से बांधो। शद्दू का लफ्ज शद से है, वसाक बंधन को कहते हैं। कैदियों को रस्सियों से बांधो यानी जो बाकी लोग हैं अब उनको जाने ना दो, और हर एक को मारो भी ना, थोड़े से बस मर जाएं, बाकियों को जमा करके ले आओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाग जाएं और तुम्हारे साथ फिर ज्यादती करें। यहां तक बात कितनी हुई कि जब दुश्मन मैदान जंग में आए जुरत का सामना करो, पहले सारे हालात देख चुके थे, अब इसके बाद तुम अपने आप को इनके सामने सीना सपर बनो। और सहाबा किराम हकीकत में ऐसे ही थे, नमाजों में खाशेन बन जाते थे, राकेन बन जाते थे, रातों को राहिब बन जाते थे अल्लाह के डर से डरने वाले, और दिन में दुश्मनों के सामने वो क्या बनते थे, फुरसान बन जाते थे, घुड़सवार बनते थे। ये है मुसलमान का खूबसूरत इम्तिजाज, क्रस्ट। कई दफा आपको मिसाल दी है, क्रस्ट क्या, रोटी ऊपर से क्रिस्पी हो, पिज्जा आप बनाते हैं ऊपर से क्रिस्पी लगे, जब खाएं तो इतना सॉफ्ट हो कि मजा आने लगे। मोमिन बज़ाहर ऐसा ही होता है, अल्लाह के आगे जाता है रो पड़ता है, दुश्मन के आगे आता है अकड़ता है। आज मुसलमान का हाल क्या है, मिसाल भी दूंगी तो आपका दिल मिचलाएगा। ऐसी रोटी जो ऊपर से कच्ची, आटा बहरा, ढीले ढीले, काफिरों के सामने जाते हैं दुश्मनों के, उनसे मरूब, उनसे बातें, और मुसलमानों के साथ आते हैं तो अंदर से सख्त रोटी की तरह दांत टूटने वाले, बिल्कुल अपोजिट कहानी हो गई। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली सूरत में, आप देखेंगे कि एक मोमिन किरदार क्या होता है। अल्लाह करे आज के मुसलमान को ये किरदार मिल जाए, कहा जब तुम्हें कोई लड़ने पे आता है तो फिर तुम क्यों ढीले होते हो। आज मुसलमान, दुनिया में कितने मुल्क हैं गालिबन मुसलमानों के, 200 मुल्क हैं, कितने, तकरीबन 200 के करीब मुस्लिम मुल्क हैं। सिर्फ इस एक हुक्म पे अमल कर ले मुसलमान, दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाए। जब हम मुसलमान जब इनसे भीख मांगते हैं, जब हम इनकी एड के लिए रोते हैं तो आप देखे चढ़ते हैं सर पे, और आप जरा आंखें दिखाएं तो लोग कहते हैं देखा अब इन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी। खबरें तो आप मेरे से ज्यादा सुनते होंगे, अब फुलां को भी हो गया, अच्छा जी अब बिल्ली के भी पर निकल आए और अब फुलां को भी हो गया। हाँ भाई हमें तुम हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो रज़ में हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। जब दोस्तों की महफिल होती है मोमिन ऐसे होता है कि जैसे उससे प्यारा ही कोई नहीं, उससे इजी गोइंग ही कोई नहीं, नरम सॉफ्ट बेतकल्लुफ, और जहाँ हक और बातिल आता है तो फौलाद बनता है। दोनी मीन की ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी खैबत से राई। मोमिन दोनी पहाड़ इनके सामने आते हैं तो दो टुकड़ों में होते हैं कि छोड़ दो रास्ता दे दो ये तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, सहरा भी हट जाते हैं, पत्थर भी हट जाते हैं रास्ते से। और जब बंदा अपनों में आता है अल्लाह के आगे आता है तो उसका हाल बुरा है। आज दुख की बात है कि मुसलमान की सारी हमदर्दियां दिल से, मैं तौर तरीकों की बात नहीं करती, दिल से आप देखें ना हमें उन पे तरस आता है, हम कहते हैं हाय ये बेचारे काफिर, ये बेचारी औरत, ये बड़ी स्वीट है जल्दी में कपड़े पहनना भूल जाती है, और ये मुसलमान का पहन पहन के गलत काम करती है, ये स्कार्फ देखो पहन के बदनाम करती है, अंदर सोच गंदी हुई हुई है, हमीयतुल जाहिलिया। सूरत माईदा में डिटेल से बात की थी, अंदर जब तक आपके दिल में मोहब्बत नहीं अपने दीन से इस्लाम से, आप खुद अपनी जड़ें काटेंगे। और इन्होंने एक एक बंदा गिना होता है कितने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कितने नहीं। हैरत की बात है कि गैर मुस्लिम मुल्कों में आप जाते हैं, एक तो वो मजहब के नाम पे पूछते थे पहले कि आप मुस्लिम है कि नहीं है। फिर मैंने आपको पीछे भी एक कहानी सुनाई थी कि फिर वो अब ये पूछने लगे कि आर यू शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम, तो तुम्हें क्या, मैं कोई भी हूँ। और अब आपको पता है कि ऐसा फॉर्म मेरे सामने एक आई किसी की बात कि उस पर लिखा था कि आर यू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और नॉन प्रैक्टिसिंग, डूब के मर जाए मुसलमान। काफिर को पता है तुम नॉन प्रैक्टिसिंग हो, भला क्यों आपको पता, उनको क्या लगे, वो उनको आपकी जन्नत और जहन्नम की फिक्र है, वो किसको अपना गिने किसको गैर से गिने, किसको हिट लिस्ट पे रखे और किसको लेके दूसरों को उन्हीं के साथ जाके खाना जंगियां करवाते फिरें। हमसे ज्यादा काफिर हमें जानता है। मैंने आपको एक वाक्य सुनाया था किसी जगह कि एक शख्स ने कोट सीना था और वो कोट सीने से पहले उसने कितने साल एक कंपनी में काम किया कि मैं देखूं कि वो अच्छे कोट कैसे बनाती हैं। फिर उसने अपनी फैक्ट्री लगाई और उसके बाद वो कहता है कि जो पहले ही शख्स आया मैंने उसका कोट सिया तो उसको अच्छी फिटिंग नहीं आई, फिर मैंने फील किया कि इसकी हड्डियां जो है वो मैं उसको समझ नहीं सका। 8 साल उसने एनाटॉमी का एक कॉलेज अटेंड करके उसमें हड्डियों की साख्त पे सीखा कि ये मैं देखूं कि लंबे बंदे की हड्डी कैसी है छोटे, हमें तो उसी आएगी, हमने तो 8 साल अपने इस्लाम के लिए नहीं किया, दुनिया के लिए नहीं किया। और उसके बाद जब अब वो कोट सीता तो उसका चैलेंज है कि किसी का इवन कुबड़े लोगों के वो कोट सीता है, टेढ़ों के, लंबों के, छोटी टांग, बड़ी टांग, कहता मैंने पूरी बॉडी को पढ़ा कहाँ की हड्डी कैसी होती है, किसकी कहाँ की होती है। मेहनत करते हैं लोग, सोए हुए तो नहीं हमारी तरह 12-12 बजे तक, उनकी रातें सारी शादियों और मेहंदियों में तो नहीं जाती। तो लिहाजा इस्लाम अपना एक रंग रखता है, यही यहाँ बता दिया कि जब मैदान जंग में आ जाओ फिर पकड़ो फिर मारो। क्या ये जरूरतमंदी होगी? आप देखिए कि कोई भी मामला देखे, आप क्रिकेट मैच ले लें, सिर्फ मैं लाना चाहती हूँ आपको नीचे के दर्जे पे कि आप अपने जहन से पहले इस खौफ को निकालें कि मुसलमान बड़े जंगजू होते हैं। आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, खिलवाते हैं और आप देखते हैं किस टीम को आप अच्छा कहते हैं, मोए मारे हुए बल्ला भी नहीं उठा रहे, रू ढीला ढीला बॉल मारे, नहीं आई एम सो सॉफ्ट, पकड़ के पीछे करेंगे उसको, कहते हैं फुला ने ऐसा छक्का मारा गेंद ही नहीं मिली, फुला ने वो हॉकी मारी वो बॉल भी साथ चला गया वो बल्ला भी साथ चला गया। जरूरत है ना, जब मैदान जंग में गियो अल्लाह के बंदो तो वहां जाके लाड़ दिखाओगे, कमर पतली है या तुम ढीले और बड़े लचकते हुए हो, ऐसे खिलाड़ी को कौन लड़ाएगा। तो अल्लाह जब ये कह रहा है कि जब पहुंच जाओ मैदान जंग में तो वहां जरूरत दिखाओ, तो क्या अच्छी बात है कि बुरी? बेस्ट कोच कौन होता है? कहते है आज जवानों लग जाओ करके दिखाओ जरा आज क्या होता है। तो अल्लाह मुसलमानों की हिम्मत में धारा है कि लेकिन देखो सबको नहीं कतल करो, फशुद्दुल वसाक, कुछ को बांध के रखो वसूख से बसक से। अब क्या करें, इसे अगले हिस्से पे लिखे कैदियों के साथ सलूक की 3 किस्में, मुश्किल तरीन आयत है तर्जमे के अतबार से, लेकिन अगर साथ साथ लिखते जाएंगे एक एक चीज सिर्फ तर्जमे से इंशाल्लाह वाज़े होगी। फइम्मा, बस अब एक चीज, यानी कैदी आ गए, अब कैदियों को क्या करो। इस्लाम से पहले कैदियों को गुलाम बना लिया जाता था, इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं बाद में, पहले मैं आपको सिर्फ आयत का मफहूम बता दूं। कहा कि अब जो कैदी आ गए अब क्या करो, नंबर एक फइम्मा मन्नन, मन्नम बादू, पहली सूरत यह कि एहसान कर दो कैदियों पर, एहसान करके उनको यानी आजाद कर दो, ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत व इम्मा फिदान, या इनसे फिदिया ले लो यानी ब्लड मनी ले लो, कैदियों की कीमत होती थी उस दौर में भी, हर दौर में होती है, उसको दे दो। कब तक? लेकिन हत्ता तदल हर्ब औजा रहा, यहाँ तक कि जंग अपने हथियार डाल दे, यानी कैदियों के साथ जो मामला होना है वो मैदान जंग में नहीं होगा, जंग के खत्म होने का इंतजार करो, जंग ड्रॉ हो जाए किस तरह से मामला हो जाए उनको रखो, उसके बाद फिर इनका फैसला होगा। हत्ता तदाल हर्ब औजारहा, ये बात करके फरमाया जालिका, हुक्म यही है। हाँ वलौ यशाउल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता लन तसर मिनहुम, खुद ही इनसे बदला ले लेता, मुमकिन था कि नहीं? जिब्राइल को भेजता एक पर मारते सारे कुफारे मक्का की आंखें निकल जाती, पॉसिबल था? दूसरा पर मारते मदीना के सारे यहूद के भेजे निकल जाते, मुमकिन था? आज भी मुमकिन है, लेकिन लेकिन वो तो आजमाना चाहता है तुम्हें बास को बास के जरिए। अब ये मैंने दो नाम तो माजी के लिए, आज के ग्लोब को सामने रखते हुए इस आयत को देखें, क्या अल्लाह बदला ले सकता है? जहाँ जहाँ मुसलमान कुचले जा रहे हैं, खून की नदियाँ बह रही हैं, इज्जतें लुट रही हैं, इस्मतें लुट रही हैं, वलौ यशा अल्लाहु लंतसरा मिनहुम, नहीं है अल्लाह से कोई बड़ा? किसी की CID, किसी की फोर्स, किसी के वेपन्स, किसी के हथियार, किसी के एटॉमिक एनर्जी, किसी की नाइट्रोजन बॉम्ब बड़ा क्यों नहीं करता? वला की लगी अब लुक बाधको, मैं मुसलमानों अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है तुम क्या करते हो, तुम सारे काम उसी पर डाल के ये तो नहीं फिल्म देखने लग जाते कि अल्लाह खुद ही करेगा जी अपने दीन के काम, लाओ दिल बड़ा बोझल है को फिल्म देखते हैं। नहीं, वल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाह, हाँ दिल में सवाल आता है कि अच्छा फिर ये जो इतना मुसलमानों को मार रहे हैं, उधर मुसलमान बच्चे बच्चे के हाथों के अंदर इन्होंने तलवारें पकड़ा दी, इन मुसलमानों का क्या होगा? जिहाद के ज़िमन में या गैर मुस्लिमों के जो जुल्म और हमलों से मुसलमान मरते हैं उनका क्या होगा? का क्यों फिक्र करते हो, वो तो कुतिलू फी सबीलिल्लाह, उन्होंने तो हादसे में भी मर जाना था, रोड एक्सीडेंट पे मर जाना था, शुक्र करो अल्लाह के रास्ते में मर गए। फलें युदिल्ला आमालहुम, अल्लाह इनके अमाल ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह नहीं ज़ाया करते इनके अमाल, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो जो अल्लाह के रास्ते में मारे जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत तक जिहाद कायम रहेगा, क्यों? अल्लाह लोगों को दर्जे देना चाहता है। हमने तो असल में इस दुनिया में शहादत हक की गवाहियाँ ही नहीं दी, हमें शहादत के मुकाम भी नहीं पता। जो लोग इस दुनिया में इस हक की गवाहियों में काम करते हैं उनको पता है कि दिल की हालत क्या होती है, फिर वो शहादत की तमन्ना भी रखते हैं कि अल्लाह तेरे लिए ज़िंदगी गुजारने के तो लज्जतें पा ली, अब ज़रा अपने रास्ते में मौत भी दिखा। शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई, मोमिन या तो शहादत के लिए लड़ता है कि अल्लाह मज़ा चखना चाहता हूँ, बस टेस्ट करना चाहता हूँ, फिर बच गया। यकीन करें लिटरली ऐसे वाक़यात है साहबा के, मैदान जंग से फतह याब होके जीत के आते थे और रो रहे होते थे, कहते अल्लाह ने आज भी नहीं मज़ा चखाया मौत का। माएँ बच्चों को भेजती थी और कहती थी कि देखो मुझे खबर ये मिले कि मेरे बेटों ने सीने पे गोली खाई है, अगर मुझे खबर मिली कि तुम मरे हो, ये नहीं कि शहीद हो गए हो, मरे हो लेकिन गोली तुम्हारी पुश्त पे थी, तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, यानी कि तुम मैदान जंग से भाग रहे थे और पीछे से चोट पड़ी। ये जुरत कहाँ है आज? लगता है ना ये बातें नकार खाने में तोती की आवाज़ है। आज ये हक दब गया, इसकी जगह रंग रौनक का दीन है, लुडियाँ डालो, नातें पढ़ो, गाने गाओ ढंके की चोट पे, वी आर मुस्लिम दिस एंड दैट, हम तो ये कहानियाँ सुना के इस्लाम को जितवाएंगे। हमने तो नौजवान नस्लों के हाथों में गिटार पकड़ा दिए कि गाओ कौमी नगमे, नात पढ़नी है इंडियन गाने की धुन पे पढ़ो, फिर कितनी बिकती है। ऐसे मुसलमान खसो खाशाक से भी कीमती नहीं। आज का दौर अगर हम देखें अल्लाह के नबी की हदीस को सामने रख के पूरे शऊर से ये कह सकते हैं कि अल्लाह को बिल्कुल परवाही कोई नहीं, नेक दुआएं करेंगे कबूल नहीं, कोशिशें लोग करेंगे कबूल नहीं, क्यों? अपने अपने मामले हर एक सीधे कर रहा है, इसलिए जब कैदी आए तीन में से एक काम करो। अब थोड़ी सी बात यहाँ करूँगी कैदियों के साथ हुस्ने सलूक की, क्योंकि कैदी का लफ्ज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंसान को तकलीफ दे लगता है और इसके बाद इंसान सोचता है कि शायद इस्लाम ने ही ये सारी खेल कर दी। इस्लाम से पहले जब जंगें होती थी तो जो दुश्मन फौज होती थी, ज़ाहिर है कि जो मकलूब हो जाते थे उन सब के जो लोग बचे रहते थे, लोग उनको ग़ुलाम बना लेते थे, कैदी। जानवरों से बदतर सलूक, जानवरों के डरबों में उनको रखते, खाना नहीं पीना नहीं, और दूर को छोड़ दीजिए यानी नबी सल्लम की सीरत को छोड़े, आप क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री पढ़ के देखें, इस आज के दौर में ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि ऐसे ऐसे ज़ालिम बादशाह गुजरे हैं। स्टूडेंट थी अमेरिका में तो वो नाम नहीं लेना चाहती, बिल्कुल गैर मारूफ मुल्क है दुनिया का, वहाँ कुछ अरसा रहने गई थी तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक ख़ास जगह जिसको अब उन्होंने बिल्कुल एक किस्म का स्पॉट बना दिया है कि लोग आके देखते हैं, कहती हैं कि वहाँ की मिट्टी सुर्ख है। क्यों सुर्ख है? कहते हैं कि माजी में यहाँ जो बादशाह थे इतने ज़ालिम और जाबिर थे, उनका शुगल क्या था कि जब कैद में रखा होता, बादशाहों का फ़न का दिल है, सारे लोगों को जमा करा के स्टेडियम की तरह लोग बाहर जमा होते और उसके बाद कई दिन के भूखे रखे हुए शेर उस मैदान में आते हैं और फिर अपने दरबारियों को कहते कि कैद खानों में से एक एक कैदी को लाओ और उनको यूं उछालते, और कहते उसका वो उछलना था, वो भूखे शेर सबके सामने उसको चीरते फाड़ते, और ये मंजर देख के लोग तालियां बजाते और वो उनके खून से मट्टी लाल हुई भी है। आपने क्या समझा आज टॉर्चर सेल्स में क्या हो रहा है? बिजली के शॉक, उनके प्राइवेट पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी लगा लगा के जलाना, और क्या कुछ नहीं। अल्लाह कितने अदब सिखा रहा है कि वो जालिम वो जुल्म करते थे, तुमने नहीं करना, खबरदार, ये कैदी हैं, लेकिन तुम्हें अल्लाह के नाम पे मिले हैं, अब तुम अल्लाह का हुक्म ना भूलना। पहली बात क्या की, मन्नन, एहसान करो। मन का लफ्ज़ सुनते हैं ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, सूरह आले इमरान में हम पढ़ चुके। और ये जो उर्दू में मन है ना, वो भी यही है। 40 किलो को गालिबन मन कहते हैं, बोझ होता है इसका मानी, यानी एहसान, इन पे एहसान करो, आज़ाद कर दो। पहली सूरत है कि इनको आज़ाद कर दो, अच्छा सलूक करो इनके साथ, इनको माफ़ कर दो, जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम ये काम कर सकते हो। फिर उसके बाद दूसरी के फिदा, खून बहा ले लो। मुख्तलिफ तरीके से चेंज किया जाता था, मसलन पैसे ले लिए जाते थे, बस दफ़ा दूसरी तरफ से जो कैदी होते थे, जैसे कुछ मुसलमानों के पुराने कैदी काफिरों के पास भी तो होते थे ना पिछली किसी जंग में, तो बदले में दे दिए जाते थे। मसलन जैसे आप देखें कि ए और बी दो मुल्क हैं, ए और बी की एक लड़ाई हुई तो ए जीत गया, उसने बी के कुछ लोगों को कैदी बना लिया, रख दिया। कुछ अरसा गुजरा, फिर ए और बी की लड़ाई हुई, अब बी जीत गया, अब बी के पास ए के कुछ कैदी हैं, तो क्या होगा कि बी कहेगा ठीक है ये कैदी मैं तुम्हें देता हूँ, वो पिछली जंग का एक कैदी हमें वापस कर दो। ये सूरत भी मौजूद थी। फिर उसके बाद तीसरी सूरत क्या होती है, यानी इसके अंदर कैदियों को वापस लेने और जाने की, कि उनके ऊपर तुम एहसान करते हुए उनको वहाँ ही रखो, लेकिन उनसे कोई खिदमत ले लो। मसलन जैसे ग़ज़वे बदर के जो कैदी थे, उनसे बच्चों को पढ़वाने का काम लिया गया था। गालिबन 17-17 लोगों के ऊपर एक कैदी को मुकर्रर किया, और मैं हैरान होती हूँ कि उम्मते मुस्लिमा के पहले मदरसे के टीचर नॉन मुस्लिम्स थे। आज तक किसी बहस में नहीं निकल चुके कि नॉन मुस्लिमों से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। पहले अपने बच्चों के जेहन तो ठीक करें, सोच तो सीधी करें, फिर वो कहीं भी चले जाएंगे, उनको नुकसान नहीं होगा। तो बहरहाल कैदियों के साथ सहाबा कराम का जो अमल था, सूरत अनफाल में आपको सुनाया था कि खुद खजूर खाते थे और कैदियों को रोटी खिलाते थे। इतना अल्लाह के नबी उनको हुक्म देते थे कि किसी के साथ कोई बुरा मामला नहीं होगा, अच्छे तरीके से रखो। इसकी डिटेल्स बहुत सारी हैं, जो पिछली तफसीर में मैंने बहुत डिटेल से सारी इनकी बातें पढ़ाई थी, लेकिन आज के दौर में चूंकि ये ऐसा है नहीं, इसलिए इस पर बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूँगी। मज़ीद किसी को चाहिए तो पिछले साल की तफसीर सुन लें। लेकिन आज के दौर में जो काल कोठरियों में बंद किया जाता है, उसके मुकाबले में तो बहरहाल इस्लाम ने तो एहसान की दावत दी थी, कैद ना करो, पीछे से ना करो, कोई पीठ फेर जाता है तो उसका ताकुब ना करना, कोई ज़ख्मी है तो उसको मारो नहीं, जिसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया उसको अमन है। फतह मक्का के मौके पे भी इस किस्म के एहसान की बहुत सारी सूरतें पेश हुई थी। तो बहरहाल यहाँ ये बता दिया कि इस्लाम कोई वहशियत और बर्बरियत नहीं सिखाता, इस्लाम बहुत अच्छा है। अब ये कौन फैसला करेगा कि आज़ाद करना है कि कैद करना है या कुछ, ये अमीर वक्त करेगा, जो मुसलमान हुक्मरान होगा, जो लीडर होगा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने ये जो बात कह दी कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए उनके अमल अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा, इससे मुराद ये है कि शहीद की जो पिछली ज़िंदगी की कुछ गलतियाँ कुछ कोताहियाँ, अल्लाह उसको भी माफ़ कर देगा और उनका मामला उनकी पिछली ज़िंदगी पर होगा। काबिले गौर बात है, मैदान जंग में शहीद हो रहा है इंसान, कुतिल फी सबीलिल्लाह, फिर भी उसके पिछले अमाल देखे जाएंगे। अल्लाह के नबी के सामने एक शख्स मर रहा था, शहीद हो रहा था जंग में, लोगों ने कहा हाय हाय जन्नती को देखो, कहा नहीं मैं देख रहा हूँ माले गनीमत की एक चादर जिसने चोरी की थी वो इसके ऊपर आग की बना के उड़ा दी गई। शहीद के भी हदीस में आता है सारे मामलात पे अल्लाह नरमी करता है सिवाय कर्ज के। मैं सोचती हूँ कि लोग क्यों सोचते नहीं है, नबी सल्लम हर एक ही नमाज जनाजा पढ़ाते थे, मकरूज की नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि इंसानों के मामले हैं ना। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ ये बता दिया कि जब भी कोई मामला पड़ेगा तो इंसान के पिछले अमल भी दिखाए जाएंगे, कैसे फलई युदिल आमालहुम बल्कि सयहदीहिम व युस्लिख बालहुम, वो पहुँचा देगा इन्हें बुलंद मदारिज पर और संवार देगा इनके हालात को। اللہ اکبر. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ, اور داخل کر دے گا ان کو ان بہشتوں میں جس کی پہچان اس نے ان کو پہلے سے ہی کرا دی تھی. یہ شہید کے درجے ہیں جو اللہ کے راستے میں گیا. اللہ اس کو بلند درجوں پہ دے گا, ہدایت دے گا, ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا, پچھلی زندگی کے کچھ گناہ, کچھ غلطیاں, کچھ کمیاں پیشیاں تھیں ان کو معاف کر دے گا. ایک دفعہ جب بندہ اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے نا, اللہ اس کے اوپر رحم کا معاملہ کرنے لگتا ہے, ان کی حالت بہتر کر دیتا ہے. غزوہ احد کا موقع تھا, مسلمان وقتی طور پہ شکست کا شکار ہو چکے تھے, شہید بھی تھے اور زخمی بھی تھے. ابو سفیان آیا اور اس نے نعرہ لگایا, اولو حبل, ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا حبل زندہ باد. مسلمانوں نے جواب میں نعرہ لگایا, اللہ اعلی و اجل, اللہ بلند اور بزرگ ہے. ابو سفیان نے کہا, یہ دن بدر کا مارکا ہوا, یعنی جو بدر میں تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا, اور اسی طرح لڑائی کا پانسہ بدلتا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا, تم ہم سے کیسے برابری کے دعوے کر سکتے ہو, ہمارے مقتول اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ کا ایندھن بن چکے ہیں. مشرقین نے کہا, ان لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارا تو عزا ہے تمہارا تو عزا بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا, ان کو کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. تو یاد رکھیے, اللہ اپنے راستے میں قربان ہونے والوں کی قربانیاں ضائع نہیں کرتا. اس کے اچھے نتائج ہیں, چند لوگوں کی شہادت قوم کی بقا ہوتی ہے. سیہدیہم, کچھ لوگ اگر اللہ کے راستے میں لڑنے مرنے یا وقت لگانے محنت کرنے لے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی زندگی کے راستے سنا دیتا ہے. ہم کسی دور میں دیکھیں, ہماری زندگیوں میں کون سی جنگ لگی ہوئی ہے, ہم عورتوں نے کہاں جانا ہے, ہماری جنگ تو اس کتاب کو سیکھنے کی ہے نا. آج کا جہاد ہمارا تو اپنے وقت اور اپنے علم کے ساتھ جہاد ہے نا. آپ دین کی طرف آتے ہیں, سارا خاندان آپ کا دشمن ہو, چند دن فکر نہ کریں. جس کمیونٹی سے آپ اٹھ کے آئیں, پہلا دن آپ کا مشکل, واقعی قتلوا فی سبیل اللہ ہی لگے گا, لیکن آپ کی یہ قربانی یہ راستے ہموار کر دینا, سیہدیہم, اگلوں کو بھی آپ کے راستے پہ لائے گا. آپ میں سے ہر ایک کسی دوسرے کا صدقہ جاری ہے, وہ جس نے آپ کو بھیجا وہ کسی کا صدقہ جاریہ تھا, یہ ہے سیہدیہم. اور یصلحوا بالہم, تو اب آپ خود دیکھ لیں کیا آپ کے حالات سنور رہے ہیں اس کتاب سے جڑ کر کہ حال بگڑ رہے ہیں. اگلا وعدہ اللہ کا یقین رکھ لیجئے کہ دنیا تک اگر اصلاح ہو رہی ہے حالات میں, تو یدخلہم الجنت عرفہا لہم, اللہ وہ جنت دے گا جس کی پہچان دنیا میں کرا دی. چینج فیل نہیں کریں گے, اجنبیت نہیں ہوگی, جنت میں جائیں گے تو یوں لگے گا مدتوں سے وہیں رہتے ہیں, سارے راستے ان کے جانے پہچانے, راستہ نہیں پوچھنا پڑے گا. عرفہا لہم, پہچان لی ہے. حدیث میں تو جنتی جائے گا اپنے گھر کو اتنی آسانی سے پہچان لے گا کہ جیسے کہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جتنی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے معاملات آسان کر دے گا. اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں لگنے والے بنیں.